महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच की तनातनी एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई जब सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने इसे संवैधानिक मूल्यों का हनन और बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। आखिर एक बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति इतनी क्यों गर्मा गई, ये जानते हैं अभिमन्यु शिटोले से, जो नवभारत टाइम्स मुंबई के पॉलिटिकल एडिटर हैं। अभिमन्यु जी, नारायण राणे की इस गिरफ्तारी के पीछे क्या राजनीति है?
राजनीति तो जब से राणे बीजेपी में गए हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, तब से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति चली रही है। और आप देखेंगे कि नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, तो जो शिवसेना के दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे हैं, उनके स्मृति स्थल से उन्होंने शुरू की और उसको लेकर के भी शिवसेना के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि राणे ने जिस तरह से शिवसेना के साथ विश्वासघात किया है, तो उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता शिवसेना दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की समाधि पर जाने का, और शिवसेना के उन्हें अगर वहां गए तो शिवसैनिक उन्हें वहां से भगा देंगे। लेकिन चूंकि मामला एक केंद्रीय मंत्री का था और शिवसेना प्रमुख जो दिवंगत हैं बाला साहेब बाल ठाकरे, उनकी समाधि चूंकि अब एक पब्लिक ट्रस्ट हो गई है, तो वहाँ उस समय शिवसेना ने कोई विरोध नहीं किया। नारायण राणे वहाँ गए, वहाँ उन्होंने अपने पुष्पहार अर्पित किए और उसके बाद वो वहां से चले गए। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से चूंकि शिवसेना राणे का विरोध कर रही है, तो बाद में जाके वो समाधि स्थल का शुद्धिकरण दूध से और गौमूत्र से किया गया। अब चूंकि ये मामला इतना लंबा चलता आ रहा है शिवसेना के साथ, स्पेशली उद्धव ठाकरे के साथ में नारायण राणे के जिस तरह के मतभेद हैं और पूरा राणे परिवार जिस तरह से उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को लेकर के आक्रामक रहा है, न सिर्फ नारायण राणे बल्कि उनके दोनों बेटे लगातार उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, और जो चीज बीजेपी खुद नहीं कह सकती वो नारायण राणे और उनके बेटों के मुंह से कहलवाती है, तो ये पूरा एक राजनीतिक परिदृश्य है। अब जन आशीर्वाद यात्रा जैसे ही मुंबई की सीमा से बाहर निकलकर रायगढ़ और कोंकण की सीमा में पहुंची, तो नारायण राणे और ज्यादा आक्रामक हो गए, क्योंकि शिवसेना का जो कोर वोट बैंक है वो कोंकण है और मुंबई में रहने वाला जो कोंकणी समाज है वो है। तो जब राणे का भी होम पिच कोंकण है, रायगढ़ है, तो जैसे ही वो अपने क्षेत्र में पहुंचे नारायण राणे और ज्यादा आक्रामक हो गए और उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी। अब वो जोश में की या स्ट्रेटेजिकली की, रणनीतिक रूप से की, ये तो वे ही बेहतर जानते हैं, लेकिन वो टिप्पणी जो थी वो मैं अगर वहां होता तो मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार देता। तो ये टिप्पणी एक ऐसी टिप्पणी थी तो जिससे आप ये समझ सकते हैं कि शिवसेना जिसका मूल चरित्र आक्रामक है और वो अपने नेता के प्रति इस तरह की टिप्पणी को सहन नहीं कर सकते थे। जैसे ही ये टिप्पणी मीडिया में आई और जंगल में आग की तरह राणे की ये टिप्पणी फैली, उसके बाद शिवसैनिकों का गुस्सा जो है वो उतरा और उनका विरोध करने के लिए बीजेपी के लोग तो कम लेकिन नारायण राणे के लोग ज्यादा थे, जिसमें जो बहुत आक्रामक बयानबाजी होने लगी है। और नारायण राणे की मुख्यमंत्री के खिलाफ इस टिप्पणी को लेकर प्रदेश भर में, महाराष्ट्र भर में कई जगह पर पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गई, FIR दर्ज कराया गया और ये कहा गया कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो है महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं, समाजों के बीच में एक भेदभाव उत्पन्न करना चाहते हैं और इस तरह की असामाजिक टिप्पणियां करके वे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं।
यानी थप्पड़ का बयान तो एक बहाना है, आपका कहना है कि जो ये पुरानी रंजिश इनकी चली आ रही है वो एक बड़ी वजह बन गई इस बयान के बहाने। जैसा बीजेपी भी कह रही है कि ये बदले की कार्रवाई है, उसका कहना है कि महाराष्ट्र के 42 में से 27 मंत्रियों पर केस है, अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं और नारायण राणे को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसको लेकर क्या कहना है दोनों दलों का? क्योंकि कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने का ये अधिकार है भी कि नहीं, इस पर बहस चढ़ गई।
अधिकार है या नहीं ये तो कानून के जानकार बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन दो चीजें बहुत साफ हैं इसमें कि जो महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका इस पर एक बड़ा आधिकारिक स्टेटमेंट आया है और वो बयान है, उन्होंने ये कहा है कि नारायण राणे ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बात कही है उसका ना तो पार्टी समर्थन करती है और ना समर्थन किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार देंगे। इस बयान का समर्थन पार्टी नहीं करती, ना ये बीजेपी की संस्कृति है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि पार्टी नारायण राणे के साथ पूरी तरह से खड़ी है, तो नारायण राणे का इस चीज के लिए समर्थन करती है कि भाई उन्होंने जो कुछ बोला वो गलत है, लेकिन जो महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो महाविकास अघाड़ी सरकार जिसे कहते हैं, वो राणे के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है उसका समर्थन भी पार्टी नहीं करती और राणे के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
जी, बीजेपी की अभी जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है उसके खिलाफ भी महाराष्ट्र में कई जगह FIR हुई है, क्या वहीं से ये तनातनी और तनाव और ज्यादा बढ़ा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि यात्रा को अपार जन समर्थन मिलने से शिवसेना बौखला गई है।
देखिए, दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारी जन आशीर्वाद यात्रा को जो समर्थन मिला है उसकी वजह से शिवसेना बौखला गई है। लेकिन क्या है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर के पिछले दिनों जो स्थिति रही है, और आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज आए, 1/3 मौतें जो है पूरे देश में महाराष्ट्र में हुई हैं, और उसको लेकर के महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा सतर्कता और सावधानी बरते जाने की जरूरत है। और महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित कर रखा है जिसमें तमाम सारे डॉक्टर्स और हेल्थ विशेषज्ञ और सारे लोग हैं जो सरकार को समय समय पर सलाह देते हैं। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए और केंद्र सरकार की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी तरह के राजनीतिक सामाजिक प्रदर्शनों और कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है पेंडेमिक एक्ट के तहत, महामारी अधिनियम के तहत। अब ये जो अब रोक लगी है तो जो सारे जो केसेस जो FIRs दर्ज हो रही हैं वो जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह से लोगों की भीड़ लग रही है और जो कोविड प्रोटोकॉल है, कोरोना का जो बिहेवियर है उसके उसका पालन न करने की धाराओं के तहत हो रही है। कहीं पे लोग मास्क नहीं लगाए हैं, 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा हो रहे हैं, तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि अगर किसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, इस तरह का कोई आंदोलन प्रदर्शन कार्यक्रम होता है तो पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है। अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगी तो कल से लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर आपने कार्रवाई नहीं की और हमारे घर का छोटा सा फंक्शन है उस पर आप कार्रवाई करने क्यों आ रहे हो। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा है, FIR अगर हो भी रही है। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारी जन आशीर्वाद यात्रा से घबराकर सरकार कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये तो पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम कर रही है।
कभी गहरे मित्र रहे और अब धुर विरोधी बन चुके इन दोनों दलों की ये तनातनी आने वाले समय में और बढ़ती देखेंगे क्या हम?
निश्चित तौर पर। देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति को और शिवसेना की राजनीति को, तो शिवसेना का मूल स्वभाव आक्रामक है, उसके कार्यकर्ता आक्रामक हैं। और जिस तरह से अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो इस तरह की घटनाएं जो है वो शिवसेना को संजीवनी देने का काम करती हैं, उसके कार्यकर्ता को और आक्रामक करने का काम करती हैं। जहां तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सवाल है, मुख्यमंत्री का जो पूरा कैरेक्टर है, जो पूरा चरित्र है, उन्होंने पिछले हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा विरोधाभास है कि एक बड़ी आक्रामक पार्टी का जो नेता है वो बहुत ही ज्यादा सौम्य है, बहुत ही ज्यादा शालीन दिखता है, लेकिन फैसलों में उतना ही सख्त है। अब आप ये देखेंगे कि शिवसेना के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज कुछ महत्वपूर्ण है राजनीति में तो वो ये कहा जाता है कि मुंबई महानगर पालिका की सत्ता जो है वो शिवसेना की जान की प्राण है, यहीं से शिवसेना का, मुंबई महानगर पालिका की सत्ता से ही शिवसेना का आधार जो है वो ये है। मुंबई से अगर शिवसेना का आधार कमजोर होता है तो पूरे राज्य में इसका आधार कमजोर होगा। दूसरा उसका वोट बैंक है, वो बहुत मजबूत वोट बैंक कोंकण में है। कोंकण का जो समाज है वो शिवसेना के साथ परंपरागत रूप से जुड़ा रहा है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा। और नारायण राणे का भी जो पूरा राजनीतिक क्षेत्र है वो कोंकण है, और कोंकण में ही राणे को और राणे के बेटों को शिवसेना ने कई बार परास्त किया है। यहाँ बांद्रा के उपचुनाव में नारायण राणे को परास्त किया है। अब नारायण राणे के साथ बीजेपी की ताकत है और बीजेपी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से महाराष्ट्र में ताकतवर हुई है वो ताकत नारायण राणे को मिली है, और नारायण राणे की ताकत और बीजेपी की ताकत दोनों को मिलाकर शिवसेना को आगामी, क्योंकि अभी 6 महीने के भीतर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, तो उन चुनावों में घेरने की एक रणनीति बनी है। और ये रणनीति बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई है, कि जो अटैक शिवसेना पर नारायण राणे या उनके विधायक जो बेटे हैं वो और जो दूसरे चुनाव हार गए हैं वो बेटे हैं वो कर सकते हैं, वो बीजेपी नहीं कर पा रही है। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में ये पूरा प्लानिंग है
जी, यानी कि आने वाले चुनाव के समय तक हम इन दोनों दलों में ये तकरार और भर्ती देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो इन दोनों को ही ये ख्याल रखना होगा कि एक बयान का विरोध पत्थर बरसाकर या हिंसा के जरिए ना किया जाए। अभिमन्यु शिटोले जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।